ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज के बाबा के मधुर महावाक्यों में बाबा ने स्वस्मृति दिलाई, पुरुषोत्तम और सर्वोत्तम में क्या अंतर है। संगम युग ऑस्पिशियस युग क्यों कहा जाता है? ये शुभ युग, श्रेष्ठ युग, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए इस संगम युग पर आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है। इसी संगम युग पर ही आत्मा अपने स्वधर्म में टिक करके सत्य कर्म, सतगुरु की शिक्षा से, सच्चिदानंद से योग लगा के श्रेष्ठ कर्म करके सत्व प्रधान बनती है। ये पुरुषोत्तम युग सर्वोत्तम युग है, क्योंकि सर्वात्माओं के परम पिता परमात्मा तुमको कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाते हैं। दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह रोने की दुनिया है, रोना कभी नहीं है। कुछ भी हो जावे, रोना नहीं है। तुम बच्चे सुख की दुनिया का अनुभव संगम युग पर ही करते हो, और तुम्हारे को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति भी इस समय होती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा, और साथ साथ रूहानी बच्चों को इस समय ही न केवल पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, लायक बनाते हैं, राजाओं के राजा बनाते हैं। नरसे नारायण बनाते हैं। सात तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम तम बनने का शुभ समय है। क्यों? कि इसी समय बाप तुम्हें नरसे नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी, पारब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे यानी बहुत भाग्यवान बख्तावर भाग्यवान बच्चे कभी रोते नहीं है। जिसका बख्त कम होता है वो दुखी होते हैं अथवा दुखी करते हैं उसको कम बख्त कहा जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। एक बात कौन सी समझाते हैं, चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो, तुम आत्मा कहेंगे कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। शिव बाबा की बात आत्मा को समझाते हो, ये बाप भी कहेंगे, ब्रह्मा भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहां मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते। कौन समझाते हैं? लेकिन परम आत्मा आत्मा को समझाते हैं, या फिर आत्मा आत्मा को समझाती है। मनुष्य भान में नहीं समझा सकती। आत्मा समझ आत्मिक भाव में देखते हुए आत्मा को समझाना। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि सब चलाते रहो, परंतु जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वो सत्य है, चैतन्य है, इसलिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है और वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। सारे कल्प में फिर ये ज्ञान नहीं मिलता। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं, तुमको आत्मभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे आत्मभिमानी बनाने, बाबा के साथ योग लगाने अथवा याद करने, जिससे ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें बाबा भाई बाबा को याद करो तो बाबा हम बच्चों के फायदे के लिए ही कि हम तमो प्रधान बन गए, हमको बाप की याद से ही सत्व प्रधान बनना है, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। भल मनुष्य पुकारते भी हैं पतित पावनाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीता राम कहे तो ठीक है, इस हिसाब से सीता राम पतित पावन सीता राम, तो तुम सब आत्माएं सीताएं हो अथवा भक्तनिया हो, वो एक राम भगवान तुम भक्तों को फल चाहिए तो भगवान द्वारा फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं, तो बेहद का ड्रामा है, इसको कोई और समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ एकदम समझो नीचे, तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सर्वोत्तम को ही सतो प्रधान कहे, सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहेंगे। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बना के योग सिखा के पुरुषोत्तम बनाते हैं, सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है इसको कोई भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता का चक्कर का ज्ञान, कलयुग फिर संगम युग होता है, फिर सतयुग होता है। तो बाबा किस लिए आते हैं? पुराने को नया बनाएंगे ना, कौन बनाए पुराने को नया? नहीं तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाए, पतित को पावन कौन बनाए? बाप बगैर कोई बना नहीं सकता। तो बाप भी संगम पर आकर के पढ़ाते हैं, न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्टी संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह ऑस्पिशियस युग है, बहुत ऊंच शुभ समय है संगम युग, जबकि बाप आकर बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य हैं, परंतु वही मनुष्य दैवी गुण वाले बन जाते हैं और सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सत्व प्रधान, इसलिए उनको कहा जाता है जो मनुष्य निर्विकारी सत्व प्रधान बन जाते हैं, गुणवान बनते हैं, तो उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूं, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक बाप ही है, बाकी सब हैं ब्राइड्स, भक्तनियां। तो पतित पावन सीताराम ये कहना तो ठीक है, पतित पावन सीताराम ये कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में दूसरी लाइन जब बोलते हैं तो रोंग कर देते हैं। दूसरी लाइन क्या है? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो वो तो ये तो निराकार के लिए बाबा ने कहा पतित पावन, किनको पावन बनाते हैं? आत्मा रूपी सीताओं को जो पंचवटी में बैठी हैं, ये पंच तत्वों की कुटिया में बैठी हुई हैं, उनको पावन बनाते हैं। त्रेता में पावन बनाने की बात नहीं, और ही गिरती कलम में जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि पहली लाइन तो ठीक है, जो पिछाड़ी में बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम, एक रॉन्ग हो जाता है। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम कीर्तन करते हैं तो सेकंड लाइन जो है वो रघुपति राघव त्रेता का राजा को राम यानी सीताओं का राम नहीं कहेंगे, आत्माओं का राम, आराम देने वाला दिला राम, वो राम त्रेता वाला नहीं है, वो रघुकुल का नहीं है, ये तो निराकार परमात्मा राम है। उसमें भी भक्ति में कहते हैं राम में भी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, यानी हर एक में बसता है। तो वास्तव में फिर सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। पर मनुष्य तो बगैर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, बस धुन लगाते हैं, कीर्तन करते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है, बाप आकर के पहले कौन सा धर्म और कौन सा कुल स्थापन करते हैं? बाप आकर के ब्राह्मण कुल स्थापन करते, ब्राह्मणों को सो देवता बनाते हैं, सत्व प्रधान बना के देवी कुल बनता है। पर बाबा इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है, कुल है, राजधानी स्थापन नहीं होती है, ये तो परिवार है, डायनेस्टी नहीं है, राजाई या नहीं है, ना पांडवों की और ना कौरवों की। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता, गीता ज्ञान बाबा दे रहे हैं, कौन देते हैं, कौन सुनाते हैं, भगवान सुनाते हैं। तो पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। आत्मा शरीर छोड़ती है तो जहां जिस शरीर में रहती है, जिस मकान में रहती है, जिस कपड़े को पहने हुए है, यह वस्त्र है ना आत्मा का, वस्त्र बदली करती है तो उसका ड्रेस चेंज हो गया, फिर नई जगह गई एड्रेस भी चेंज हो गया। फिर ड्रामा का राज समझो, उसका रोल भी चेंज हो गया, किसी का दादा, किसका मामा, किसका हस्बैंड था, जाके क्या बना, बच्चा बन गया। रोल चेंज हो गया ना, पालना देने के बजाय पालना लेने वाला हुआ। और चौथी बात, संग अथवा कंपनी बदल गई। अब उसमें जो संस्कार लेके गया होगा उस अनुसार पार्ट प्ले करेगा। आत्मा तो वही है, आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, बाकी ड्रेस, एड्रेस, रोल और कंपनी चेंज हो जाता है। ड्रामा में पार्ट चेंज हो जाता। तो बाप कहते हैं नाम आत्मा का कभी नहीं बदलता, श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में होता है, उस शरीर का नाम श्री कृष्ण है सतयुग में। नंबर वन में भी वही जाता है, लक्ष्मी नारायण नंबर वन है, फिर किंगडम में सेकंड थर्ड, तो उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे ना। सेकंड नंबर लक्ष्मी नारायण का भी नंबर फर्स्ट लक्ष्मी नारायण से कम होगा, थर्ड का उससे भी कम होगा। और फिर राम नवमी, वो तो नवीं डायनेस्टी हो गई, नाइन्थ डायनेस्टी हो गई, तो जरूर है नंबर कम होंगे ना। अभी मार्क्स कम होते जाएंगे। ये भी माला बनती है, बाप ने समझाया दो मालाओं का गायन है। वो कौन सी? एक है रुद्र माला, दूसरी है रुंद माला। रुद्र माला है शिव बाबा के गले का हार, रुंद जो सृष्टि चक्र में आती है वो विष्णु के गले का हार है। विजय, फिर उसमें कोई विजय बनता है, कोई नंबर वार आते जाते हैं। तो रुंड माला भी होती है तो रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं और तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, नंबर वार बनते हो। तो जैसे तुम विष्णु के गले का हार बनते हो, पर पहले घर में आत्माएं जाती हैं परमधाम में, तो बाबा के गले का हार है, वो रुद्र माला है। तो पहले पहले शिव का गले का हार बनते हो, उसको रुद्र माला कहा जाता है। माला को जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। तो माला का दाना वही बनते हैं जब श्रीपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना, प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है कब से? यह परिवार प्रवृत्ति मार्ग संगम युग पर ब्रह्मा बाबा से शुरू होता है। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से शुरू होता है, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, फिर माला में ऊपर में फूल है शिव बाबा, माला फेर फेर कर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसमें यानी ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आती, ब्रह्मा की आत्मा पुनर्जन्म में आती है। इनकी आत्मा ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं तो भी इनकी आत्मा अपनी आत्मा शरीर में है, वो अपने शरीर निर्वाह करती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ब्रह्मा के तन का देखभाल करती है, क्योंकि उस तन की मालिक तो आत्मा है ना। फिर इनका काम क्या है? ज्ञान देना। ब्रह्मा जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, पहले ऐसी आत्माएं आती थी यानी प्रोजेक्शन होता था, वह आत्माओं का साक्षात्कार उनको होता था अथवा संदेश मिलता था। तो बाबा कहते हैं अब वो आत्मा आई, क्या वो शरीर छोड़ के आई? क्या उस आत्मा ने तो नया जन्म ले लिया। ये तो जैसे रील में वो सीन प्रोजेक्ट हो जाता है और ऐसे ही दिखाई पड़ता है जैसे कि अब आत्मा, जैसे अभी भी हमारे किसी भी इतनी भी फिल्म है उनका रियल पिक्चर फिर से प्रोजेक्ट हो सकता है ना, वो भी टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी मनुष्यों की साइंस के आधार पर है, वो साइलेंस के अभ्यास के आधार पर इमर्ज करते थे। तो उनकी आत्मा ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़ करके तो नहीं आती। ये भी ड्रामा में पहले से ही नूंद है और ये सब भक्ति मार्ग है। वह आत्मा तो गई, जा करके दूसरा शरीर लिया, तो तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है। कोई शरीर छोड़ता है पार्ट चेंज होता है ना, कोई शरीर छोड़ता है सिर्फ ड्रेस चेंज किया ना, आत्मा तो अविनाशी है ना, तो चिंता क्यों करनी चाहिए? कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बेबा बीबी मरे तो हलवा खाना। एक्चुअली पहली बारी बाबा ने जब ये बोला था, अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीबी मरे तो हलवा खाना, तो जब यशोदा मैया ने शरीर छोड़ा था तो निर्मल शांता दादी को बाबा ने कहा था, बच्ची अम्मा मरे तो भी हलवा खाए, बीबी मरे तो भी हलवा खाए, हलवा भोग तो हलवा ही लगता है, परंतु डिटैच रहना है, शक्तिशाली बन के रहना है, रोना नहीं है। हलवा जो है बन गया तो कड़ाई से चिपकेगा नहीं, तो कहां भी किसी भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। पर जामा का ज्ञान होगा तो रोएंगे नहीं, नया पाठ मिले, नई कंपनी में जॉब लगे, रोगी दुखी क्यों हो गए। तो फिर बाबा ने मिसाल दिया, उस समय ये शांता बहन जो अभी ब्यावर में रहती हैं, पहले बीकानेर में रही, उससे पहले जयपुर में थी, तो हम भी दिल्ली गए थे जयपुर से, वो भी दिल्ली आई थी, नहीं दिल्ली में बाद में आई, उसने उसकी माँ ने शरीर छोड़ा दिल्ली पांडव भवन में करोल बाग में। उस दिन भोग का दिन था, गुरुवार का दिन था, स्नान किया, फ्रेश हुई, भोग खाया, हलवा खाया, तो बाबा को लिखा, बाबा आपने खाया, अम्मा मरे तो हलवा खाना, मैंने तो सचमुच हलवा खाया, भोग लगाया था, आज यहां पर तो हलवा खाया। फिर पीछे फ्यूनरल में गई तो फिर उनको बताया कि तुम रोते क्यों हो, आत्मा तो अविनाशी है, अगर आपका संबंध शरीर से है तो शरीर को जला क्यों रहे हो, शरीर पर क्यों, रिश्ता शरीर के साथ होता तो शरीर को रख लेते, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा से तो रिश्ता फिर भी रह सकता है। तो जो रो रहे थे उनको चुप करा दिया। तो बाबा ने शांता बहन का मिसाल दिया, बच्ची ने जाकर उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर गए दूसरा शरीर ले लिया, अब रोने से लौट के थोड़ी आएगी, बख्तावर रोते थोड़े ही हैं। तो वहां सबको रोना बंद कराए, समझाने लगी, ऐसी बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। फिर अच्छी तरह से जब ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं बात तो ठीक बोलते हैं, जब ज्ञान को ठीक रीति से प्रेजेंट करो तो अपील करता है मनुष्य को, ऐसे सुनते सुनते शांत हो जाते हैं, कोई फिर वातावरण रोने का ना रहे, सत्संग का रहे, तो भागवत रखते हैं या कोई और ग्रंथ पुस्तक 13 दिन तक रखते हैं, तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते, ज्ञान नहीं है श्रीदी से, तो बच्चियां सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते रोने की तो दरकार ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को पार्ट बजाना है, उनको नया पार्ट मिला है, रोने की क्या जरूरत है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो, अब पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। बाप देते हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तो खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, वो मालिकपन का नशा चढ़ेगा और फिर 21 पीढ़ी कब रोएंगे नहीं। पीढ़ी अर्थात पूरे बुढ़ापे तक रोएंगे नहीं। अकाल मृत्यु नहीं होती है तो अंदर कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जगत जीत बनेंगे, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। इसमें हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास कौन सा बाण है, कौन सा बाण है, कौन सी तलवार है? तुम्हारे पास है ज्ञान की तलवार। ज्ञान कटारी तुम्हारे पास है, ज्ञान बाण तुम्हारे पास है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों के को स्थूल बाण और तलवार खड़ग आदि दे दी है। ये तो आर्टिस्ट की भाषा है, पर है तो अंदर ज्ञान को इतना तेज, अज्ञान को काटने वाला ज्ञान है, इसलिए तलवार कहते हैं। बाकी लक्ष्य पक्का है, निशाना जाके लगता है, आत्मा को टच होता है तो ज्ञान को तीर कहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण और खड़ग आदि दिखा दिए। खड़ग मारना तलवार। तो बाप कहते हैं बाकी जो भी देवियां हैं कोई हिंसक थोड़े ही है। काली के हाथ में, दुर्गा के हाथ में बड़े हिंसक हथियार दिखाए हैं। तो बाप कहते हैं ये तो ज्ञान तलवार आदि से विकारों को कितना जीतना है। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, योग की शक्ति की धार है उस ज्ञान की तलवार में। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी होती हैं। तुम स्थूल तलवार से किसकी हिंसा थोड़ी करोगे। ये सब भक्ति मार्ग है। साधु संत आदि निवृत्ति मार्ग वाले हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं। और तुम तो संन्यास करते हो, सारी पुरानी दुनिया का आत्मा पवित्र बन जाएगी और ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। पवित्रता के बल से और इस समय ज्ञान शक्ति देता है, खुशी देता है, सुख देता है वो संस्कार लेके जाएंगे। अगर यहां भी जन्म लेंगे एडवांस पार्टी आत्मा में के लिए जा बाबा बोल रहे हैं, अगर यहां भी जन्म लेंगे तो कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वे संस्कार ले जाएंगे। मां बाप के पास फिर वो, क्योंकि संस्कार दैवी संस्कार होंगे, सुख के संस्कार होंगे, रोने के संस्कार नहीं होंगे, तो सबको प्यारे लगेंगे। कहेंगे ये तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, तो कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर दूसरी पॉइंट, श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? सांवरा क्यों बनाया? वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, क्या मतलब है श्याम बन जाने का? भक्ति मार्ग में भी एक यादगार है कि श्री कृष्ण पहले काला नहीं था, श्याम नहीं था, सुंदर था। तो उसको जब नदी, जो जमुना नदी थी या कौन सी नदी थी, उसमें सांप नाग रहता था, वो बहुत जहरीला था। तो श्री कृष्ण को था कि उस जहरील को, गैर को खत्म करना चाहिए। तो वो गेंद खेलते खेलते, गेंद के बहाने नीचे गेंद फेंक दिया नदी में, जमुना में। तो नीचे तो सर्प और सर्पणी थे, तो नाग सोया हुआ था। सर्पणी उसको कहती है, मेरे पास हीरे मोती बहुत है, हाथों के कंगन गीत बना हुआ है, ले रे बालक, हाथों के कंगन, कानों के कुंडल, 9 लाख के हीरों के हार, ये जाग जाएगा तो तेरे को नुकसान पहुंचाएगा, इनके चोरी चोरी सोते हुए मैं आपको दे देती हूं। श्री कृष्ण नहीं गया, सांप जाग गया, सांप ने फुफकार मारी, श्री कृष्ण काला हो गया, सांवरा बन गया। ये भक्ति की कहानी है। तो ये तो कहानी तो क्या है कि विकार सांप है, उनके जहर से इंसान का बॉडी नीला काला हो जाता है। तो हद की बात को बेहद में, बेहद की बात को हद में रख दिया। अब आप कहते हैं कि देखो वो संस्कार ज्ञान के लेके जाएंगे। श्री कृष्ण को काला क्यों कहते हैं? गोरा होगा ना, शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, उनको सांवरा क्यों बनाया ये कोई बता नहीं सकता। यानी विकारों की फुफकार नहीं कि सांवरा बनाया ना, बस सांप आदि तो वहां होते नहीं। अब सतयुग में तो सांप होंगे नहीं, तो द्वापर की बात है ना, जो सांप काला बना देवे। यहां जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो न सांप होते हैं न जहर चढ़ता है। तुम तो भी दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता नहीं। तो पहले पहले ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मण को अडॉप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, स्त्री तो है नहीं, ये किसी को पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की तो तुम मुख वंशावली हो, स्त्री की बात नहीं है। इनमें बाप प्रवेश करते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है, तो जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। अभी तुम बच्चे माया पर जीत पाते हो, तो इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। पांच विकारों रूपी माया हराती है, जिनमें पांच विकार हैं उनको असुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिरों में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न है, सोलह कला संपूर्ण है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारी महिमा है, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज बन रहे हो, फिर सतो प्रधान बना रहा हूं। तो बाप तो बच्चों को पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बना देते हैं। ये बात शास्त्रों में नहीं है। अब शिव बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं, वो तो ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। तो बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों का सार मैं जानता हूं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। द्वापर से तुम पुजारी बने हो, सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वो पूज्य घराना है, फिर हो जाता है पुजारी घराना। तो इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप आकर 84 जन्म की कहानी बताते हैं, और ये खेल है पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। ये खेल तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में भारत में आदि सनातन देवता धर्म था, ना कि हिंदू। तो बाबा कहते देखो कितनी सारी बातें, भक्ति की बातें बाबा को फिर समझानी पड़ती हैं। जो असत्य है उसको सत्य भाव क्या है ये समझाना पड़ता है। ये पढ़ाई है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है, बेहद की पढ़ाई है। कहते हैं सागर को सही बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा ना हो। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा, तुम इनका किताब कितनी किताब बनाओगे। लिखते जाओ लिखते जाओ, ज्ञान तो बढ़ता जाएगा। शुरू में बाबा भी सवेरे सवेरे उठ के लिखते थे, मम्मा फिर सुनाती थी, तब से लेकर छपता आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे, गीता तो एक इतनी छोटी सी है, गीता का लॉकेट भी है, छोटा लॉकेट भी बनाते हैं गीता शब्द लिख के। गीता का प्रभाव है, यानी ज्ञान का प्रभाव है, परंतु भूल फिर क्या गए, श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान का प्रभाव तो है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। कितनी बातें बाबा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। दूसरी बात, पुरानी दुनिया को और पुराने शरीर का संन्यास करना है। ये शरीर भान का भी, वास्तव में तो अंत में तो शरीर का भी संन्यास करना है। सेकंड पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। कमबख्त नहीं बनना, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना। किसी बात की चिंता नहीं करना। कोई शरीर छोड़ देवे तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। समझ में आ गया, वो तो ड्रेस चेंज किए है, रोल चेंज हुआ है, रोए क्यों? वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा एक सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर भाव, कंट्रोलिंग पावर द्वारा। एक्सप्लेनेशन, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारा बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना अमंत हो, वातावरण में अमा है पर स्वयं की स्थिति शांत हो, इसमें चाहिए समेटने की शक्ति। एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और फिर सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व का कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम एक सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी स्वरूप की स्मृति स्वरूप विजयी बनना, नष्ट मोहा बनना। ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन बनो। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन बनो। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे देह की वैराग व्यक्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति।